इनके पास नौकरी नहीं, इनके पास एफडी का इंटरेस्ट नहीं और इनके पास ग्राहक नहीं। लेकिन अचानक व्हाट्सएप आता है, हैरी पॉटर के जैसे निकल देते हैं अतीत की दुनिया में गर्भ का आइटम लेने। वो रही गर्भ की दुकान, चलो अंदर चले,
हमें गर्भ दो, अतीत का गर्भ।
अरे वाह, अरे ये रहा गर्व, ओ वो रहा गर्व, ओ गौरव देख, गर्व मिल गया,
गर्व ही गर्व।
नमस्कार, मैं रवीश कुमार। गर्व और पर्व, भारत में पर्व की कमी नहीं है मगर गर्व की कमी है। पिछले 7-8 सालों में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में लाखों की संख्या में ऐसे ऐसे पोस्ट लिखे गए जिसके जरिए रिटायर्ड अंकिलों में यह भाव पैदा किया गया कि भारत में गर्व की कमी है। उसके बाद इस कमी का प्रसार घर घर में हुआ और बात बात में बताया गया कि गर्व करना कितना जरूरी है। गर्व करने के लिए अतीत से आइटम जुटाने का प्लान बन गया। वर्तमान का यह सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें गर्व को शामिल नहीं किया जा रहा है। हमें नहीं पता कि लोगों में हीनता का बोध इतना बढ़ गया है कि गर्व की सप्लाई बढ़ानी पड़ रही है। रिटायर्ड अंकिलों और हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में हर दिन ऐसे ऐसे मैसेज ठेल दिए जाते हैं जिनका संबंध गर्व बढ़ाने से होता है। बड़ी संख्या में लोग गर्व उत्पादन में लगे हैं इसलिए बाकी चीजों से परेशान नजर नहीं आते।
इनके पास नौकरी नहीं, इनके पास एफडी का इंटरेस्ट नहीं और इनके पास ग्राहक नहीं। लेकिन अचानक व्हाट्सएप आता है, हैरी पॉटर के जैसे निकल देते हैं अतीत की दुनिया में गर्व का आइटम लेने। वो रही गर्व की दुकान, चलो अंदर चले,
हमें गर्व दो, अतीत का गर्व।
अरे वाह, अरे ये रहा गर्व, ओ वो रहा गर्व, ओ गौरव देख, गर्व मिल गया,
गर्व ही गर्व।
आपके समझने के लिए गर्व स्टोर की कल्पना उसी दर्शक ने की है जिन्होंने प्राइम टाइम के पिछले अंक में बुलडोजर गेम बना दिया था। वो बताना चाहते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने कई साल लगाकर पहले बेरोजगारी और आर्थिक तंगी में डूबे लोगों को अतीत की हीन भावना का बोध कराया, फिर उन्हें वर्तमान आर्थिक हीनता से निकालने के लिए गर्व का गेम थमा दिया। लोगों को किसी न किसी बहाने गर्व का डोज मिलता रहे, इसके लिए कई महापुरुष खोज निकाले गए, कई परंपराएं और कई स्वतंत्रता सेनानियों को भी खोजा जा रहा है। आप माने या ना माने, भारत में इस वक्त गर्व करना सबसे बड़ा राजनीतिक उद्योग है। तरह तरह के व्हाट्सएप पोस्ट पढ़कर लगता है कि हैरी पॉटर के किस्से की तरह रात को लोग एक ट्रेन में बैठकर अतीत के उस स्वर्ण युग में चले जाते हैं जहां गर्व स्टोर में गर्व ही गर्व रखा हुआ है। लोग वहां से कपार पर गर्व ढोकर ला रहे हैं। सारे शहर में नए नए गर्व के लिए जगह बनाई जा रही है। स्कूल के सिलेबस में भी बदलाव हो रहे हैं ताकि गर्वों के लिए जगह बने। मुगलों के इतिहास गायब किए जा रहे हैं ताकि गर्व के लिए और अधिक प्लॉट बच सके। ऐसे लोगों की कमी नहीं जो मानते हैं कि फला कालखंड को पढ़ा देने से गर्व की कमी हो गई, अब हटा देने से गर्व का उत्पादन और प्रसारण बढ़ जाएगा। जो लोग आर्थिक संकट से परेशान हैं वही लोग इन दिनों गर्व के उत्पादन से भी खुश हैं। भारत में इन दिनों गर्व का पर्व मन रहा है और हर पर्व गर्व के साथ मनाया जा रहा है। गर्व कराने का काम दो तरह से हो रहा है, एक गुप्त रूप से व्हाट्सएप में और दूसरा प्रकट रूप से मस्जिदों के बाहर या स्कूलों कॉलेजों के बाहर। व्हाट्सएप में एक मैसेज देखकर मैं गर्व खोजने लगा कि अगर आप इस समुदाय के हैं तो उस समुदाय की दुकान से दंत मंजन ना खरीदें, यह लिखा था। अपने समुदाय की दुकान से मंजन और बर्तन खरीदें और अपने समुदाय पर गर्व करें। गर्व की स्थापना और बोध कराने को लेकर कहां से कौन सा संगठन आपके सामने अवतरित हो जाएगा पता नहीं चलता। मैं ये पता करने में लगा हूं कि अलग अलग संगठनों में अलग अलग लोग काम करते हैं या एक ही तरह के लोग हैं जो सभी संगठनों में काम करते हैं या हर लोग को एक एक संगठन का जिम्मा दे दिया गया है। आखिर भारत में गर्व कराने के लिए इतने सारे संगठनों की जरूरत क्यों पड़ रही है? कर्नाटक में एक और संगठन आ गया, उसका एक और काम सुनिए। हो सकता है कि यह पुराना संगठन हो लेकिन हमने इसका नाम आज ही सुना।
हिजाब मामले पर स्कूल की डेवलपमेंट कमेटी के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की वकालत करने वाले दक्षिणपंथी हिंदू संगठन क्रिश्चियन स्कूल में बाइबल पढ़ाए जाने के खिलाफ खड़े हो गए। इस मामले में यह संगठन स्कूल डेवलपमेंट कमेटी के फैसले से सहमत नहीं।
भारत का स्कूल या भारत का कोई भी एजुकेशन सिस्टम वो संविधान के आधार पर चलना चाहिए और भारत के एजुकेशन एक्ट के अनुसार चलना चाहिए। यहाँ पर आप किसी बच्चे को कह रहे कि नहीं आपको बाइबल पढ़ने के लिए मिलेगा या बाइबल आप पढ़ना है, तो फिर वहाँ पर जो एडमिशन दे रहे हैं वो अन्य धर्मीय बच्चों को क्यों दे रहे हैं? आपका ईसाई स्कूल है वो ईसाइयों के है तो ईसाइयों के लिए रखिए। तो ये छोटे बच्चों के मन को प्रभावित करके उनको कन्वर्जन के जाल में लाने के लिए जो प्रयास चल रहा है, इसके लिए हमारा यहाँ पर इसका विरोध है।
1914 में बना क्लेरेंस हाई स्कूल बेंगलुरु के प्रतिष्ठित स्कूलों में से दाखिले के आवेदन पत्र पर साफ लिखा है कि यहाँ बाइबल पढ़ाई जाती है और जो अभिभावक या छात्र इससे सहमत हैं, वो ही यहाँ दाखिला लें।
We are aware that some people in society...
कुछ लोगों को हमारे स्कूल की एक पॉलिसी पर एतराज है। हम अपने वकीलों से सलाह मशवरा कर रहे हैं। हम देश के कानून से प्यार करते हैं और इसके दायरे में बंधे हैं। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो कानून का उल्लंघन हो।
We will follow their advice in keeping with the law of the land.
स्कूल में बाइबल पर रोक से पहले इसी हिंदू जन जागृति समिति ने हलाल मीट के बहिष्कार की मांग की थी। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर परिसर और धार्मिक मेलों से गैर हिंदुओं की दुकान हटाने की मुहिम छेड़ी। प्रमोद मुथालिक की श्रीराम सेना ने हनुमान मंदिर के बाहर एक मुस्लिम तरबूज व्यापारी की दुकान तोड़ दी। अजान को लेकर भी ये संगठन सड़कों पर आ चुके हैं। लव जिहाद के नाम पर दक्षिण कन्नड़ा जिले में हिंसा आम है। एक संगठन ने मुस्लिम मालिक या ड्राइवर की गाड़ियों से तीर्थ यात्रा न करने को कहा। श्रीराम सेना ने मैंगो यानी आम के किसानों से मुस्लिम व्यापारियों का बहिष्कार करने को कहा। साथ में अक्षय तृतीया पर मुस्लिम दुकानदारों से गहने खरीदने का बहिष्कार करने का भी आह्वान किया। अगले साल कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव है। बेरोजगारी और महंगाई के बीच मुद्दे तलाशती बीजेपी पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप लग रहा है। येडियुरप्पा के उत्तराधिकारी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की पकड़ आरएसएस और पार्टी पर वैसी नहीं है जैसी येडियुरप्पा की हुआ करती थी। ऐसे में नेताओं के साथ साथ छोटे बड़े संगठनों में भी मौके का फायदा उठाने की होड़ लगी है। हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं, नुकसान इस राज्य की छवि का हो रहा है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।
यदि आप गर्व नहीं कर पा रहे हैं तो इन संगठनों से संपर्क कर लीजिए। देश भर में इनकी संख्या हजारों में होगी। गर्व कराने वाले संगठनों ने इतना डरा दिया है कि कुछ दिनों में लोग दूसरे धर्म के लोगों को देखते ही बैक गियर में भागने लगेंगे या फिर हमला ही कर बैठेंगे। दूसरे धर्म से डरना, नफरत करना सिखाते सिखाते ये संगठन इतिहास भी पढ़ना सिखाते हैं। यही इनकी क्वालिटी है। ये इतिहास के सबसे बड़े जानकार होते हैं और जो भी नहीं जानते हैं वो किताब ही बदलवा देते हैं। जब भी लगे कि आप गर्व नहीं कर पा रहे हैं, तो काम नहीं है, कमाई कम है और शर्म आ रही है, तो इन गर्व कराने वालों से मिल लीजिए। चाहे तूफान आए या चक्रवात, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर मत निकलिए। वहां मौजूद रिटायर्ड अंकिल दूसरे धर्म से घृणा सिखाते सिखाते आपके भीतर गर्व ठूस डालेंगे। आप गर्व से फूलकर गोलगप्पा हो जाएंगे। कर्नाटक में एक धर्मगुरु ने आरोप लगा दिया कि वहां 30% कमीशन चलता है, लेकिन इन बातों से गर्व के उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जहांगीरपुरी से परिमल की रिपोर्ट बताती है कि गर्व करने के इस उद्योग के लिए जरूरी है कि गरीब लोग कुर्बानी दें।
पति के न रहने के बाद से ममता जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में ठेले पर सब्जी बेचती हैं। पिछले 8 सालों से 3 बेटों और 1 बेटी का परिवार इनकी कमाई से ही गुजर बसर करता है, लेकिन विवाद के बाद से हफ्ते भर कमाई पर ग्रहण लगा रहा।
हमारा 7 दिन तक दुकान बंद हुई है, शनिवार को बंद हुई थी ना,
रेडी पटरी नहीं लगा पा रहे,
नहीं लगा पाया, बिल्कुल भी नहीं लगा पाया।
कितने दिनों तक?
7 दिन तक।
अच्छा,
हाँ
तो नुकसान भी हुआ?
नुकसान भी हुआ हमारा, सड़ गया था सारा सामान, क्या करते, लगा ही नहीं फिर हमने।
हरभजन सिंह भोजनालय हो या फिर शेख रफीक की दुकान, असर के दायरे में सब हैं। रफीक का तंदूर, भट्टी सब उनके घर के सामने है, जो सड़क के किनारे सीडी पार्क के पास पिछले 20 सालों से सुबह शाम लगता था। उस जगह फिलहाल पुलिस की बस जमी है। 9 लोगों के परिवार को पालने में परेशानियों का दर्द छलक ही गया।
16 तारीख के बाद से काम बंद है, जब से ही दिक्कत है, और क्या परेशानी है, काम धंधा लगा नहीं पा रहे हैं। अभी ऐसे ही घर पे बैठे हैं, घर के ही सामने तो अड़ोसी पड़ोसी से लेके खा रहे हैं।
मंगल कोली जहांगीरपुरी इलाके में ई रिक्शा चलाते हैं। 2 साल से रोजाना सवारियों को लाने ले जाने का काम है। अब आज से काम पर लगे हैं तो वक्त कुछ सुधरा है, लेकिन तनाव के दौर की भेड़ चढ़ी दिहाड़ी का दर्द अब भी है।
यही मान लो 500 रुपए दिहाड़ी मान लो,
रोज दिन का,
रोज का
तो कितना दिन नहीं,
ये आज निकाली जब से 16 तारीख से, पूरी तरफ से मॉल बंद है, गलिया बंद है, रोड बंद है, हर जगह पुलिस की तनात है। इस वजह से अब पुलिस वाले भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, इस बार
नहीं
निकालने दिया सर, कौन से पैसे वाले बंदे, हमारी कोठियां है, गरीब बंदे रोज का कमाना, रोज का खाना हमारा तो सर।
जिस जगह ये पुलिस वालों की बस खड़ी है वहाँ 50 के करीब कबाड़ियों की दुकानें रोजाना लगती थी, और राहुल जैसे कबाड़ बीनने वालों का यही की कमाई से चूल्हा जलता था। काम तो शुरू किया लेकिन जब दुकानें नहीं तो बेचे कहाँ।
50-60 थी भैया दुकानें यहाँ पे, यहाँ पे कम से कम कबाड़ा वबाड़ा बीनते हैं लोग, यहाँ पे बेचते थे, 10 दिन हो गया बंद है यहाँ पे सब कुछ।
दुकानें खुल तो गईं, लेकिन जहांगीरपुरी का इलाका अब भी पुलिस छावनी में तब्दील है।
बीत गई बात गई बोलचाल में अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं, पर जिन पर बीती है वो अब भी दर्द में हैं। हालात सामान्य जरूर हो रहे हैं, पर जमीनी हकीकत यही है कि जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनकी हालत सुधरने में थोड़ा वक्त लगेगा। दिल्ली के जहांगीरपुरी से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।
बिना धर्म के आप गर्व नहीं कर सकते, और गर्व के लिए 2 धर्म की जरूरत है, अपना धर्म और उनका धर्म। याद रखिए, उनके धर्म से नफरत के बिना अपने धर्म से प्यार नहीं कर सकते। इस लेवल पर ये लोगों को ले आए हैं। पता नहीं आप कब मेरी बात समझेंगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने इस देश के युवाओं को उस तरफ नहीं धकेला होता तो आज बेरोजगार युवा नौकरी की मांग को लेकर सबको धकेल रहे होते। इतने भयंकर भयंकर मैसेजेस आते हैं। अगर कानून की बंदिश ना होती तो यहां दिखाता कि गर्व के लिए घृणा कितनी जरूरी बना दी गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 2022 के बीच श्रम भागीदारी की दर 46% से घटकर 40% हो गई है। काम नहीं मिलने से लोग इतने हताश हो गए हैं कि लेबर मार्केट में काम मांगने नहीं आ रहे। इस दौरान 2 करोड़ से अधिक महिलाएं लेबर मार्केट से गायब हो चुकी हैं, लौट कर नहीं आई हैं। मेरा मानना है कि काम न मिलने से हताश इन लोगों में अगर धर्म का गर्व भर दिया जाए तब इन्हें भी पता नहीं चलेगा कि काम नहीं मिला। कई बार लगता है कि इसीलिए धर्म को लेकर तरह तरह से टकराव हो रहा है, तरह तरह के गर्व के आइटम लोगों में ठेले जा रहे हैं। भारत का युवा गर्व ढूंढने में परेशान है, गर्मी से परेशान नहीं है, जिसके कारण खेत में गेहूं जल गए, किसानों की कमाई घट गई। मार्च और अप्रैल के महीने में जब अनेक संगठन गर्व के लिए दूसरे समुदाय के धर्म स्थलों के सामने मार्च कर रहे थे, मार्च में गर्मी खेतों में खड़े गेहूं को जला रही थी। कई जगहों पर तापमान के कारण गेहूं का दाना सूख भी गया और उत्पादन घट गया। प्रति एकड़ गेहूं का उत्पादन 4 से 8 क्विंटल कम बताया जा रहा है। इस कारण सूखे चारे की समस्या पैदा हो गई। हरियाणा में सूखा चारा 300 रुपए क्विंटल से बढ़कर 700 रुपया प्रति क्विंटल हो गया है, डबल से भी ज्यादा। हरियाणा के महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने भिवानी में सूखे चारे का भाव 1200 रुपए प्रति क्विंटल बताया है। वे अपने पत्र में कहते हैं कि राज्य सरकार की नीतियों से प्रेरित होकर उनके जिले में किसानों ने गेहूं की बुवाई इस बार कम की, सरसों और तेलहन की बुवाई ज्यादा कर डाली। अब चार जिलों ने अपने जिले से बाहर सूखा चारा बेचने पर रोक लगा दी है। यही नहीं, कार्डबोर्ड और ईंट भट्टा बनाने वाली फैक्ट्री को भी सूखा चारा नहीं बेचा जा सकता। इससे एक अलग ही समस्या पैदा हो रही है। अब अगर दूसरे जिले से गेहूं नहीं आएगा, सूखा चारा नहीं आएगा, तब तो उनके जिले में चारे की समस्या भयंकर हो जाएगी। सांसद ने अपने पत्र में लिखा है कि सूखे चारे पर रोक लगी रही तो हमारे जिले की गौशालाओं में रहने वाले गौवंश भूखे मरने की कगार पर पहुंच जाएंगी। हमारा प्रदेश एक है, गौवंश को बचाना भी हमारा धर्म बनता है। इसलिए जिले से बाहर सूखा चारा ले जाने पर जो रोक लगाई गई है उसे हटा दी जाए। हरियाणा ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी गर्मी के कारण गेहूं का उत्पादन कम होने की कई खबरें छपी हैं। 23 अप्रैल के अमर उजाला की खबर है कि हापुड़ में गेहूं का उत्पादन 20% कम हुआ है और चारे का भाव 800 रुपया प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। अखबार को किसानों ने बताया कि एक बीघा में कम से कम 320 किलोग्राम गेहूं का उत्पादन हो जाता था, लेकिन इस बार 300 किलोग्राम तक भी एक बीघा में नहीं हो रहा है। भारत में गर्मी और तापमान का मुद्दा तभी तक रहता है जब तक बारिश नहीं होती। बारिश होते ही तापमान के मुद्दे को लोग भूल जाते हैं। 2019 में कम गर्मी नहीं पड़ी थी, 2020 में भी पड़ी, लेकिन हम भूल गए। इस साल मार्च की गर्मी के कारण गेहूं के दाने सूख गए, सिकुड़ गए, उत्पादन भी घटा। सूखे दाने वाले गेहूं को सरकार भी नहीं खरीदती और बाजार भी नहीं खरीदता। जाहिर है यूक्रेन संकट के कारण गेहूं के किसानों के मुनाफे का जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है वो पूरी सच्चाई नहीं है। ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में भी एक एकड़ में 5 क्विंटल गेहूं का उत्पादन कम हो रहा है। इस रिपोर्ट में लुधियाना के कृषि अर्थशास्त्री MS सिद्धू का बयान छपा है कि पिछले 6 साल में गेहूं का उत्पादन 1 हेक्टेयर में 45 क्विंटल से कम कभी भी नहीं हुआ। सबसे ज्यादा असर बठिंडा और मानसा जिले में पड़ा है। यहां गेहूं का उत्पादन कम होने के कारण कई किसानों ने आत्महत्या की है। गेहूं का उत्पादन कम हुआ और जो हुआ उसमें से भी दाने सूख गए तो नहीं बिका। इस हिसाब से किसान को काफी घाटा हुआ। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस वजह से पंजाब में अप्रैल के महीने में 14 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। हम और आप देख पा रहे हैं कि तापमान ने युद्ध से ज्यादा भारत के किसानों को प्रभावित किया है। किसान सरकार से 500 रुपया प्रति क्विंटल बोनस मांग रहे हैं।
अवशेष बच जाता है, उससे चारे की कमी आ रही है,
बहुत ज्यादा कमी आ रही है। पहला सीगा अज तो 5-6 दिन पहला रेट सीगा 400-500 रुपये प्रति क्विंटल, हुण 900 दे तकरीबन पहुंच गया। एक तो मार पई है अपना झाड़ ते दूजी जिहड़ी एकड़ चो 2 ट्रैलियां बन दियां सीगियां वो 1 ट्रैली तो भी घट रह गई।
उसका कारण क्या है, क्यों कट?
उसका कारण बारिश पईआं, बारिश पैण करके कुछ तो अपना एक कणक मर गई, पानी ने मारती, कुछ मौसम ने तब्दीली होगी, हुण 1 लख गर्मी पैगी, गर्मी पैण करके दाना बिल्कुल कमजोर रह गया ते ओ जिहड़ी सुक्की हुई कणक दी दैड़ियां सुक गईआं उहदे करके अपना झाड़ काफी घट गया, 8-7 क्विंटल रह गया।
तो अगर 1 क्विंटल 1 एकड़ से 20-22 क्विंटल गेहूं बनता उगता था तो कितनी कमाई होती थी आपकी?
उस तो हुण ला लो 2000 रुपये ला लो 40-42 हजार,
अब
हुण 14-15 हजार रहेगी।
तो 40-42 हजार से 14-15 हजार
रहेगी।
गेहूं के निर्यात को लेकर तरह तरह के बयान आ रहे हैं। 15 अप्रैल को पीयूष गोयल का बयान है कि भारत इस साल 100 से 150 लाख टन गेहूं का निर्यात करेगा, लेकिन 2 दिन पहले वित्त मंत्री का बयान छपता है कि WTO की शर्तों के कारण भारत को अनाज के निर्यात में दिक्कतें आ रही हैं। यह भी जानना जरूरी है कि जो प्राइवेट प्लेयर निर्यात कर रहे हैं वो प्रति क्विंटल किस भाव पर कर रहे हैं और कितना कमा रहे हैं। जो किसान प्राइवेट प्लेयर को बेच रहे हैं उन्हें प्रति क्विंटल भाव कितना मिल रहा है, क्या प्राइवेट खरीदारों से जो भाव मिला है वो लागत निकालने के लिए काफी है, क्या सरकार किसानों से अधिक रेट पर गेहूं नहीं खरीद सकती थी। सितंबर के महीने में 40 रुपया प्रति क्विंटल न्यूनतम खरीद मूल्य बढ़ाया गया, 2015 किया गया उसका भाव, लेकिन जब निर्यात की मांग बढ़ी तब दाम बढ़ाकर किसानों को राहत क्यों नहीं दी गई।
कॉमर्स मिनिस्टर साहब ने कहा है कि भाई जो भारत से गेहूं का जो निर्यात है वो 100 लाख टन से लेके 150 लाख टन इस साल हो सकता है। और भी आंकलन जो आए हैं उसमें पता चलता है कि जो इंडस्ट्री है, जो ट्रेड है, वो एक्सपेक्ट कर रही है कि इवन 210 लाख टन का भी एक्सपोर्ट इस साल में हो सकता है। ये सब एक्सपोर्ट के जो आंकलन आ रहे हैं, ये एक्सपेक्टेशन जो है इतनी बढ़ रही है कि हम भारत जो है एक दुनिया को एक दुनिया का एक फूड सप्लायर बन सकता है, मेजर सप्लायर बन सकता है। ये इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है उसके करके तकरीबन 30% जो सप्लाईज जो रशिया और यूक्रेन से आती थी उसमें गैप आने से तकरीबन 55 देश ऐसे हैं जहां पर कि उनको क्राइसिस आया है क्योंकि वो इंपोर्ट करते थे रशिया और यूक्रेन से। लेकिन इसमें समझने वाली बात ये है हमें कि कहीं ये ना हो कि हम फिर दोबारा 2005 और 2006 के क्राइसिस सिचुएशन में पहुंच जाए। उस समय भारत में कोई शॉर्टफॉल नहीं था, लेकिन भारत ने यह अलाउ किया प्राइवेट कंपनियों को कि वो सीधा किसानों से जाकर खरीद कर सकती हैं। तो कंपनियों ने बहुत मात्रा में किसानों से गेहूं खरीदा और वो स्टॉक अपने पास रखा, लेकिन जब सरकार को पीडीएस की रिक्वायरमेंट की बात आई तो कंपनियों ने बताने से इनकार कर दिया कि उनके पास कितना स्टॉक है। रिजल्ट यह हुआ कि भारत को मार्केट से, इंटरनेशनल मार्केट से उस समय 5.5 मिलियन टन यानी तकरीबन 55 लाख टन का आयात करना पड़ा था, और जो किसानों को दाम दिया जाता था भारत में एमएसपी दे रहे थे हम, उससे दुगने दाम पर हमें इंपोर्ट करना पड़ा। तो ये हमें संभल के चलना है कि कहीं ये ना हो कि इस बार भी हम उसी सिचुएशन में दोबारा पहुंच जाए कि अगले साल भारत भी एक कटोरा लेके खड़ा हो जाए कि उसको भी गेहूं का आयात करना पड़े। ये सिचुएशन इसलिए चिंताजनक है क्योंकि जिस गति से या जिस एक्सपेक्टेशन से या जिस एनकरेजमेंट से भी कहें, जो एक्सपोर्ट जो है इसमें बढ़ोतरी की जा रही है या उसके ऊपर एक बैकअप दिया जा रहा है कि जितना ज्यादा एक्सपोर्ट हो उतना ही अच्छा है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे भारत के जो किसान हैं उनको कोई अभी तक कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ है। हालांकि रिपोर्ट्स छप रही हैं कि किसानों को कहीं 300 रुपए या 400 रुपए प्रति क्विंटल का फायदा हुआ है, लेकिन हम पंजाब और हरियाणा में देखें तो यहाँ पर जो न्यूनतम मूल्य है 2015 रुपए प्रति क्विंटल का, उसके ऊपर हार्डली 10 से 15 रुपए का प्रीमियम किसानों को दिया जा रहा है।
यह भी सवाल उठ रहा है कि भारत के उपभोक्ताओं के लिए कहीं गेहूं महंगा ना हो जाए, आटा ना महंगा हो जाए। इस साल फरवरी तक गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन की सूरत नजर आ रही थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर मार्च की गर्मी ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पकने के समय गेहूं को 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की जरूरत होती है, मगर उस दौरान तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो गया। 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा असर समझिए, डाउन टू अर्थ ने पूरे उपमहाद्वीप में 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की मैपिंग की है और उसके आधार पर बताया है कि उत्तरी और पश्चिमी भारत में मार्च के महीने में 14 बार लू की लहर चली है, हीट वेव। पिछले साल एक ही लू की लहर चली थी मार्च में, 10 बार भयंकर लू की लहर चली है। अंग्रेजी में इसे सीवियर हीट वेव कहते हैं। लू की ज्यादातर लहरें देश के पश्चिमी और उत्तरी हिस्से में चली हैं। 15 राज्य लू की लहरों की चपेट में हैं। सबसे अधिक मध्य प्रदेश और राजस्थान प्रभावित हैं, वहां 25 दिन लू की लहर चली है। पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भी लू की लहरों की चपेट में रहे। हिमाचल प्रदेश में 21 दिन लू की लहर चली है, सोचिए। इसके कारण ग्लेशियर के पिघलने की प्रक्रिया तेज हो सकती है, पानी का संकट पैदा होगा, सूखा आ सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि 122 वर्षों में इस बार का मार्च सबसे ज्यादा गर्म रहा है। इस साल 6 अप्रैल को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बताया कि देश भर में मार्च के महीने के दौरान सामान्य से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान था। 11 मार्च को पहला हीट वेव रिकॉर्ड किया गया था। डाउन टू अर्थ का यह कवर 2019 का है। इस पत्रिका ने समय समय पर जलवायु संकट के खतरों को लेकर कई अंक निकाले हैं। 2019 के अंक में बताया था कि कैसे भारत का करीब करीब 90% हिस्सा लू की लहरों की चपेट में है और हम इसके असर से अनजान हैं। डाउन टू अर्थ ने अपने एक अंक में बताया है कि 2019 में जून के पहले सप्ताह तक लू की लहरों की संख्या 73 हो गई थी। महाराष्ट्र में तो 28 मार्च से लेकर 20 जून के बीच हर दूसरे दिन लू की लहर रिकॉर्ड की गई। 47 दिनों तक महाराष्ट्र लू की चपेट में रहा। 2013 से 17 के बीच लू की लहरों से देश भर में 4800 से अधिक लोग मारे गए। 2018 में लू की लहरों से 19 राज्य प्रभावित थे, जिसकी संख्या 2019 में 23 हो गई। इस संख्या को आप समझिए, 1961 से 2005 के बीच भारत में लू की लहरों की संख्या 54 थी, लेकिन अकेले 2019 में यह संख्या 73 हो गई। डाउन टू अर्थ की इस रिपोर्ट में लिखा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रियोलॉजी के अनुसार 2020 से 64 के बीच लू की लहरों की संख्या 138 तक हो सकती है। 2019 में बिहार के गया में 144 लगानी पड़ी थी, धारा 144, ताकि लोग घरों में रहें। 2019 में चुरू और श्रीगंगानगर में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया था। हिमाचल प्रदेश के ऊना में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक चला गया था। 2019 में बिहार में लू की लहरों से 121 लोग मारे गए थे। लू और तेज गर्मी के असर को हम केवल मरने वालों की संख्या से नहीं समझ सकते। बढ़ता तापमान अलग अलग इलाके में अलग अलग तरीके से जनजीवन को प्रभावित करता है। कहीं महंगाई बढ़ती है, कहीं कमाई घटती है, कहीं पलायन बढ़ता है। हम केवल गेहूं की बात कर रहे हैं, लेकिन तेंदूपत्ता से लेकर मछली उत्पादन में लगे लाखों करोड़ों लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं।
जल्दी हीटवेव के कारण बहुत सारे जो रबी की फसलें हैं उनपे बहुत ज्यादा, उनके पैदावार पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। हमें पता चला कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 20-60% पैदावार में कमी आई है, और उसकी वजह से किसानों को काफी लॉस हुआ है। और जो ज्यादातर मीडिया में रिपोर्टिंग होती है हीट वेव्स की, वो ज्यादातर ये होती है कि कितने लोग मरे हैं, कितने लोग नहीं मरे हैं, पर उसके अलावा भी बहुत सारा इम्पैक्ट होता है। जैसे लोगों के स्वास्थ्य पे बहुत फर्क पड़ता है, लोगों का खर्चा दवाइयों पे और डॉक्टर के पास जाने में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसके अलावा जैसे मैंने बोला कि फसल की पैदावार कम हो जाती है, पानी की कमी होती है, क्योंकि कई बार हीटवेव्स में हीटवेव्स के साथ साथ सूखा भी पड़ता है कई जिलों में, कई जगहों पर। और उस सूखे की वजह से पानी, जो सिंचाई के लिए पानी चाहिए होता है या फिर पीने के लिए पानी चाहिए होता है, उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं हीट वेव्स से क्या फर्क पड़ता है। और एक स्वास्थ्य एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए वृक्षारोपण एक तरीका है कि वृक्षारोपण से 1-5 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है टेम्परेचर्स में, और उससे काफी फर्क पड़ सकता है। पर प्रॉब्लम यह है कि वृक्षारोपण जो है वो सही से होना चाहिए। अगर उसको सही से नहीं किया जाएगा तो उसकी वजह से पानी की कमी हो सकती है।
इस मार्च के दौरान महंगाई का भी तापमान 17 महीनों में सबसे अधिक था। एक अध्ययन के मुताबिक गांवों में महंगाई का सबसे बुरा असर पड़ा है। कई जरूरी चीजों के दाम 20% तक बढ़ गए हैं। इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के निर्यात पर रोक लगा दी है, जिसके कारण खाद्य तेलों के दाम और भी बढ़ने लगे हैं। भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय ने आज एक डेटा जारी किया, जिसके मुताबिक 10 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच भारत के 7 शहरों में वनस्पति तेलों के दाम में 13-16 रुपए की वृद्धि हुई है। वनस्पति तेल का भाव 158 रुपया किलो से लेकर किसी किसी शहर में 182 रुपया किलो हो गया है। महंगाई लू बनकर चल रही है, पर आप सभी महंगाई का बहादुरी से सामना भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के राजनीतिक दल भी बहुत बहादुरी से एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। इस युद्ध में केंद्र और राज्य संबंधों की बलि दी जा रही है। सुनील सिंह की यह रिपोर्ट देखिए।
बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर खार पुलिस थाने के सामने हमला। आरोप है कि शिवसैनिकों ने उनकी कार के शीशे तोड़े और जानलेवा हमला किया। शनिवार रात काफी दबाव के बाद पुलिस ने मामला तो दर्ज किया, लेकिन किरीट सोमैया ने आरोप लगाया कि पुलिस ने अपने मन से बयान दर्ज किया, जो उन्होंने कहा वो नहीं लिखा। इसलिए पुलिस अधिकारियों की शिकायत लेकर किरीट सोमैया सोमवार को दिल्ली गए और केंद्रीय गृह सचिव से शिकायत की।
किरीट सोमैया जिसको जेड कैटेगरी सिक्योरिटी केंद्र सरकार ने दिए, उनको पुलिस स्टेशन के परिसर में पुलिसों के उपस्थिति में उनके सहकार्य से 70-80 शिवसेना के गुंडे उनका जान लेने का प्रयास करते हैं, उसके लिए स्पेशल टीम भेजनी चाहिए। परिस्थिति चर्चा चिंताजनक है। गृह सचिव जी ने हमें आश्वस्त किया है कि इस विषय का हम गंभीरता से स्टडी कर रहे हैं, आवश्यकता पड़ी तो यहाँ की टीम भी वहाँ जाएगी।
शिवसेना नेता संजय राउत का कहना है स्थानीय मुद्दा है तो राज्य के गृह मंत्री या मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए। दिल्ली जाकर क्या वो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगवाना चाहते हैं?
मुझे मालूम नहीं कौन जा रहा है, कोई डेलीगेशन जा रहा है दो चार लोग पकड़कर। क्या हो गया महाराष्ट्र में, किसी को यहाँ थोड़ा खून आ गया है तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए बचाइए। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिलिए, तो यहां से भागेंगे चार पांच लोग पकड़कर, दिल्ली में उठेंगे, महाराष्ट्र को बदनाम करेंगे, ये तमाशा बना रखा है लोगों ने।
मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई में 25 साल की दोस्ती इस कदर दुश्मनी में बदल गई है कि नेताओं पर जानलेवा हमले भी शुरू हो गए हैं और एक दूसरे के नेताओं को जेल में डालने की हर संभव कोशिश जारी है। जून 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के बाद बीजेपी के कुछ नेताओं ने इसे मुद्दा बनाकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे को घेरने की कोशिश की। उसमें नाकाम रहने के बाद ठाणे से शिवसेना विधायक प्रताप सरनाई के खिलाफ ईडी ने मोर्चा खोल दिया। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में घिरे प्रताप सरनाई को किसी तरह सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई, लेकिन बीजेपी के खिलाफ मुखर एनसीपी के दो मंत्री अनिल देशमुख और नवाब मलिक गिरफ्तारी से बच नहीं पाए, दोनों अब भी जेल में हैं। जरंडेश्वर शुगर मिल मामले में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और उनकी बहन ईडी के निशाने पर हैं। मुख्यमंत्री के करीबी और शिवसेना कोटे से मंत्री अनिल परब, शिवसेना सांसद भावना गौली, शिवसेना विधायक रविन्द्र वायकर और बीएमसी में स्थायी समिति अध्यक्ष रह चुके यशवंत जाधव ईडी और आईटी के रडार पर हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार से मिलकर ठाकरे सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले शिवसेना नेता संजय राउत को तो ईडी अलीबाग में जमीन और दादर में एक फ्लैट की कुर्की की नोटिस तक दे चुकी है, लेकिन मार्च महीने में ईडी ने पुष्पक बुलियन मामले में थाने में श्री साई बाबा गृह निर्मिति प्राइवेट लिमिटेड के 11 आवासीय फ्लैट जब्त कर सीधे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के परिवार पर हाथ डाला, क्योंकि उस कंपनी के मालिक श्रीधर माधव पाटणकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के भाई हैं। जिसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधानसभा में बयान दिया था कि आपको सत्ता चाहिए तो ले लो, मैं आता हूं, मुझे जेल में डाल दो, लेकिन परिवार वालों को परेशान करना बंद करो।
पण एवढंच जर का तुम्हाला जीव जळत असेल तर मला टाका तुरुंगामध्ये, मी तयार आहे। पण एक गोष्ट लक्षात घ्या, थोडस मग मी भावनिक बोलतो आणि हिंदुत्ववादी बोलतो, तुरुंग कोणता? आर्थर रोड, तिहार वगैरे नाही। जसं बाबरी मशिदीच्या खाली राम मंदिर होती, राम जन्मभूमी, तसं जर का कृष्ण जन्मभूमीचा शोध तुम्हाला लागला असेल तो तुरुंग असेल ना, त्या तुरुंगात मला टाका।
बीजेपी के पास ईडी और आयटी है तो शिवसेना के पास पुलिस और बीएमसी। शिवसेना अपने धुर विरोधी रहे नारायण राणे को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपशब्द कहने के आरोप में तो उनके बेटे नीतीश राणे को हत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार करवा चुकी है, जबकि मालवणी पुलिस थाने में दर्ज एक और मामले में दोनों को अग्रिम जमानत लेनी पड़ी है। बीजेपी के पूर्व एमएलसी प्रसाद लाड और विधायक गिरीश महाजन को घेरने की कोशिश जारी है। विधान परिषद में विरोधी दल नेता प्रवीण दरेकर फर्जी मजदूर मामले में तो बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सुमैया आईएनएस विक्रांत मामले में जेल जाते जाते बचे हैं। दोनों की अग्रिम जमानत सेशन कोर्ट से खारिज होने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिली है। नारायण राणे और मोहित कंबोज के घर में अवैध निर्माण का आरोप लगाकर बीएमसी नोटिस भी दी जा चुकी है। किरीट सुमैया की तरह शिव सैनिक मोहित कंबोज की कार पर भी हमला कर चुके हैं।
महाराष्ट्र में ये ठाकरे सरकार अगर इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेकर हमारी आवाज दबाने का सोचती है तो हम डरने वाले नहीं है, घबराने वाले नहीं है, और जो हमारी लड़ाई है वो लड़ाई आगे और फोर्स के साथ जारी रहेगी, हम झुकेंगे नहीं।
आरोप है कि शिवसेना और बीजेपी के बीच जारी इस राजनीति जंग में अपनी राजनीति चमकाने के लिए राज ठाकरे और नवनीत राणा जैसे नेता भी बीजेपी का मोहरा बन शिवसेना के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, लेकिन डर है कि कहीं ये राजनीतिक टकराव राज्य की शांति न भंग कर दे। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
बलिया में गिरफ्तार तीनों पत्रकारों को जमानत मिल गई है। गुजरात से गिरफ्तार कर असम ले जाए गए जिग्नेश मेवाणी को जमानत मिली, लेकिन किसी और मामले में गिरफ्तार कर लिए गए। उधर एक समुदाय की महिलाओं का बलात्कार करने की धमकी देने वाले बजरंग मुनि को जमानत मिल गई है। आप गर्व करते हुए ब्रेक ले लीजिए और ब्रेक में भी गर्व करते रहिए।
इनके पास नौकरी नहीं, इनके पास एफडी का इंटरेस्ट नहीं, और इनके पास ग्राहक नहीं, लेकिन अचानक व्हाट्सएप आता है। हैरी पॉटर के जैसे निकल लेते हैं अतीत की दुनिया में गर्व का आइटम लेने। वो रही गर्व की दुकान, चलो अंदर चले।
गर्व दो अतीत का गर्व।
अरे वाह, अरे ये रहा गर्व, ओ वो रहा गर्व, ओ गौरव देख गर्व मिल गया,
गर्व ही गर्व।
दिल्ली के सरोजनी नगर में आज सुप्रीम कोर्ट ने 200 झुग्गियां तोड़े जाने पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गरीबों को लेकर आप मानवीय रवैया अपनाएं। सुनवाई के दौरान जस्टिस के.एम. जोसेफ ने नसीहत भी दी, कहा कि झुग्गी वासियों के भी अधिकार हैं, उन्हें इस तरह बाहर नहीं किया जा सकता, संविधान के तहत उनके मौलिक अधिकार हैं। अदालत ने यह भी कहा कि एक मॉडल सरकार के रूप में आप ये नहीं कर सकते हैं कि आपके पास कोई नीति नहीं होगी और आप बस उन्हें बाहर फेंक दें। अदालत ने इस मामले में कई पक्षों को नोटिस जारी किया। 2 मई को अगली सुनवाई है। जहांगीरपुरी में गरीबों के इलाके में एमसीडी का बुलडोजर शान से घूमा, तब वहां बचाव के लिए ना आप दिखी ना दूसरा दल, बीजेपी को तो आना भी नहीं था। आखिर फैसला उसी की एमसीडी का था, लेकिन दिल्ली के ही श्रीनिवासपुरी में अब नजारा बदला हुआ है। एमसीडी ने अवैध कब्जे पर बने एक मंदिर को तोड़े जाने का नोटिस दिया तो आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी अपने सहयोगियों के साथ वहां भजन कीर्तन के लिए पहुंच गई। उन्होंने बीजेपी पर वसूली करने का आरोप लगाया, कहा कि वो मंदिर टूटने नहीं देंगी। बीजेपी नेता भी देखा देखी पहुंचे, उन्होंने दावा किया कि वो तो मंदिर बनाते हैं, तोड़ने का काम कैसे कर सकते हैं, यानी मंदिर के बचाव में फिलहाल सभी खड़े हो गए हैं।
आप देख रहे थे प्राइम टाइम, नमस्कार।